ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयिर्याण नमो उवज्झायाण नमो लूय सव्यसाहूण ईसो पंच नमो यारो सव पाप प्रणासनो मंगलान च सव्येसे पढ़म हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलि पण्णत्तु धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहुलो गुत्तमा केवलि पण्णत्तो धम्मो लो गुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। महामंत्र अपराजित मंत्र मूल मंत्र अनादि मंत्र परमेष्ठि मंत्र नमोकार मंत्र मंत्र राज ऐसे सात नामों वाले नमोकार मंत्र पर अपना स्वाध्याय चल रहा है, एक धारा चल रही है। कभी काल जनित और कभी कर्म जनित अंतराल हो जाते हैं। धवल ग्रंथ से और मूलाचार ग्रंथ से अपन ने अरहंत शब्द को समझा था और चारित्र पहुड़ की टीका से भी अपन ने अरहंत शब्द की व्युत्पत्ति देखी थी। और इन एक एक शब्दों के अर्थ पर जब ध्यान देते हैं तो लगता है कि पूरा एक नमोकार मंत्र पर स्तोत्र बनाया जा सकता है। सार संक्षिप्त जानकारियों को लेकर के एक स्तोत्र रचना हो सकती है। जैसे अभी हमने एक लाइन लिखी है, लिखी पहले थी, अभी यहां टाइप की। अर्हणाम अर्हतीत्यर्हन विश्व विश्वातिशायिनी, आधा श्लोक है, पूर्वार्ध है। अर्हणाम अर्हति इति अर्हन, जो अर्हणा अर्थात पंच कल्याणकों की पूजा के अर्ह होते हैं, योग्य होते हैं, वे अर्हन कहलाते हैं। अर्हन शब्द की व्युत्पत्ति अर्हंत शब्द से हुई है। अर्हन, अर्हंतौ, अर्हंतः, ऐसे रूप चलते हैं संस्कृत में। विश्व विश्वातिशायिनी, विश्व विश्वातिशायिनी, यहां पर यमक अलंकार का हमने प्रयोग किया है। एक विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व, और दूसरे विश्व का अर्थ होता है सर्व। एक विश्व का अर्थ विश्व है, दूसरे विश्व का अर्थ है सर्व। तो एक सर्वनाम है और एक संज्ञा है। ये जो लोकालोक रूप पूरा विश्व है, इस विश्व शब्द को सर्वनाम नहीं माना जाता, इसको संज्ञा माना जाता है। और दूसरा जो विश्व है वो सर्वनाम है। तो विश्व विश्वातिशायिनी, इस विश्व में सबसे बढ़कर पूजा के जो योग्य होते हैं वे वो अरहन होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं। तो ये एक अर्थ था उसका, अरहंत शब्द का। और दूसरा तो आपको स्मरण है, अ और र के जो हंता है, हन धातु से बनने वाला रूप है। अब धातु और फिर प्रत्यय, ये सारे शब्द चर्चा चर्चा में सुनते सुनते आपको भी अभी अभ्यस्त होने लगे होंगे। धातु का अर्थ रूट होता है। अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द इसी पद्धति से बनते हैं। व्याकरण में अंग्रेजी के कई शब्द संस्कृत मूलक हैं, यानी उसका स्रोत जो है वो संस्कृत भाषा है। उदाहरण के लिए हम आपको दो तीन शब्द बताते हैं अंग्रेजी के जो संस्कृत मूलक हैं। जैसे संस्कृत में मुस्कराहट को स्मित बोलते हैं, अंग्रेजी में मुस्कराहट को क्या बोलते हैं, स्माइल। संस्कृत में दरवाजे को द्वार बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डोर। ऐसे अनेक शब्दों की सूची है जिसका स्रोत संस्कृत प्रमाणित होता है। प्राचीनता को अपन देखें तो संस्कृत भाषा अंग्रेजी भाषा से प्राचीन है, तो उसमें से ये सारे शब्द प्रस्फुटित होते हैं। तो ऐसी हमारी भावना है कि हम एक ऐसे स्तोत्र की रचना करें जिसमें पांचों परमेष्ठियों का गुणगान हो। हमने प्राकृत में रचना की हुई है पहले से, तो उसमें हम देखते हैं क्या लिखा है हमने। पर अभी अपन क्या है कि केवल अरहंत परमेष्ठी की बात कर रहे हैं, फिर भी प्राकृत में भी हमने वैसे पद लिखे हुए हैं। स्वाध्याय में भक्ति और ध्यान में, स्वाध्याय, भक्ति और ध्यान, ये तीन ऐसी चीजें हैं कि इन तीनों में बड़ा भारी आनंद आता है। धर्म के जगत में स्वाध्याय, भक्ति और ध्यान, ऐसा लगता है कि ये सबसे अधिक आनंदप्रद है। देखिए इसमें अरहंत देव की स्थिति करते हुए लिखा, कल्याण समावण्णो नवखाई परम लद्ध संपन्नो सैल परम प्रसन्नो सब वो देवो जिणो धन्नो। ओ का अनुप्रास रखा, प्राकृत में ऋणा की पुनरावृत्ति तो होती रहती है, ऋणा शब्द अधिक आते हैं, ऋणा अक्षर। कल्याण समावण्णो अर्थात पंच कल्याणक को जो समापन्न है अर्थात प्राप्त है, और नवखाई परम लद्धि संपन्न, नवक्षायिक उत्कृष्ट उपलब्धियों से जो संपन्न है, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्तु, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, इन नौ क्षायिक लब्धियों से सभी अरिहंत या सभी अरहंत संपन्न होते हैं। और सयल परमप्रसन्नो, अब परमात्मा के दो भेद बताए गए हैं, तो परमात्म संज्ञा को तो प्राप्त हो चुके हैं अरहंत। जैसे ही कोई मुनिराज छद्मस्थ अवस्था से सर्वज्ञ अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, वो अंतरात्मा से परमात्मा हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक वे परमात्मा जो मनुष्य शरीर में है, शरीर यद्यपि केवल ज्ञान होने के उपरांत परिवर्तित हो जाता है, अभी जैसे अपना शरीर सप्त धातु से विनिर्मित है, केवल ज्ञान के बाद वो सप्त धातुओं से विनिर्मुक्त हो जाता है, उसकी परछाई नहीं पड़ती, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हो जाता है वो, साफ सुथरा, बिल्कुल कोई उसमें मांसादिक पदार्थ नहीं होते, शुद्ध शरीर हो जाता है। उसके विषय में भी प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में एक श्लोक आता है, उद्धृत श्लोक है, शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपु जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। शुद्ध स्फटिक के संकाश अर्थात सदृश, उससे समानता रखने वाला। अब स्फटिक दो प्रकार के होते हैं, एक वो माला बताइएगा, शायद हमारे पास दोनों प्रकार की होंगी, बड़ी वाली भी निकाल अंदर, दूसरी वाली, एक दूधिया स्फटिक होता है। वैसे तो दो तक के सीमा नहीं बना सकते अपन, एक हल्का गुलाबी स्फटिक भी होता है, हम खोल लेते, और एक बिल्कुल पानी जैसा। जब पानी बहुत स्वच्छ होता है तो उसको क्रिस्टल क्लियर वाटर बोलते हैं। क्रिस्टल का अर्थ, ये क्वार्ट्स, अंग्रेजी भाषा में इसको क्वार्ट्स क्रिस्टल बोलते हैं। ये देखिए आप, नमो अरहंताणम बोलते समय भगवान का इस रूप में स्मरण कर सकते हैं जैसा उनका वर्ण है, वर्ण को भूलना नहीं। जितने 16 तीर्थंकर जो है वो गोल्डन है, तो उनको गोल्डन स्फटिक के ही रूप में देखना। वो गोल्डन स्फटिक तो जो है पुखराज जैसा होता है, येलो सफायर टाइप का। फिर जो नील वर्ण वाले हैं उनको नीले स्फटिक जैसा समझना, और जो हरित वर्ण वाले हैं वो पन्ने जैसा वर्ण होगा लेकिन स्फटिक जैसी, उसके अंदर वो फायर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। रत्नों में बहुत सारी बातें, शायद आप लोगों में से कोई श्रोता रत्नों से परिचित हो तो वो जानते होंगे, जैसे वो दीदी हैं अपनी जो भक्तामर वाली दीदी हैं, उनको इसकी जानकारी है रत्नों के बारे में। तो उसमें ये फायर बोलते हैं, फायर का मतलब कि इसमें जो सनलाइट है वो कितना पेनिट्रेट होती है, उसको फायर बोलते हैं। ये स्फटिक है, बहुत सुंदर बात है। अब श्लोक श्लोक का अर्थ करते करते ये सारे शब्द निकल आए, तो शुद्ध स्फटिक संकाशम।
सरोज चाची जी आपको नमोस्तु कह रही हैं, आज इनका जन्मदिन है।
एक एक मिनट रुको रुको, अभी स्वाध्याय के बाद ये विषय स्वाध्याय के बाद अपन देख लेंगे। अभी जो धारा चल रही है ना, उस स्वाध्याय में अपन इसको धारा को अपन अखंडित रखते हुए इस चर्चा को अपन बाद में देख लेते हैं। तो शुद्ध स्फटिक संकाशम, शुद्ध स्फटिक के सदृश भगवान उस समय हो जाते जब उनका परम औदारिक शरीर होता, तभी तो परछाई नहीं पड़ेगी। अगर ओपेक होंगे, अगर प्रकाश को आर पार नहीं जाने देंगे, तो उनके अंदर से ही प्रकाश निकलता है भगवान के, तो फिर परछाई पड़ेगी। लेकिन नहीं, केवल ज्ञान होते ही साथ, चाहे तीर्थंकर हो, सातों प्रकार के केवली अच्छायत्वम छाया रहित हो जाते हैं, परछाई नहीं पड़ती उनकी। परम तेजो मयम वपुः, और उसके बाद बोल रहे हैं कि जितना तेज उनकी मुनि अवस्था में था, मुनि अवस्था में तीर्थंकर भगवान को कई रिद्धियां होती है। गणधर देवों के पास तो दीप्त तप नाम की एक रिद्धि होती है। दीप्त तप एक ऐसी रिद्धि है, नमो दित्त तवाणम ऐसे नमस्कार किया गया है उसमें धवला में। उसके अर्थ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि दीप्त तप एक ऐसी रिद्धि है कि कितने भी उपवास कर लो, शरीर का बल, शरीर की कांति घटेगी नहीं और तेज बढ़ता चला जाएगा। शरीर तेज उज्जोय दस दिशो सव काल उवासो भी संतो। गौतम गणधर महाराज का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि जो सर्वकाल उपवास करते हुए भी, अर्थात गणधर जो होते हैं वो आजीवन उपवास करते हैं, कभी वो आहार के लिए नहीं उठते। सर्वकाल उपवास करते हुए भी शरीर तेज उज्जोय दस दिशो, अपने शरीर के तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशमान कर डालते हैं। ऐसी रिद्धि के धारक जो दीप्त तप ऋषि हैं, गणधर देव हैं, उनसे भी परम तेजोमयम वपु, उत्कृष्ट तेज से संपन्न शरीर वाले अरिहंत परमात्मा होते हैं। आप देखिए, ऋषिमंडल स्तोत्र में एक श्लोक आता है, जिसमें भगवान अरहंत का वर्णन है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जिसमें ये लिखा है ना, ताभिरभ्यधिक ज्योतिरहं सर्वनिधीश्वर। वो गणधर का पहले उल्लेख किया है और उसके बाद उन्होंने जिनेन्द्र का वर्णन किया है। देखिए हम पढ़ के सुना रहे हैं। श्री गौतम से या मुद्रा तस्या या भुवि लब्धयः ताभिरभ्यधिक ज्योति रहं सर्वनिधीश्वरः। क्या सुंदर बात है। गौतम स्वामी की जो मुद्रा है और उस मुद्रा के पास जो रिद्धियां हैं, जो लब्धियां हैं, जो तेज है उनका, ताभी ही उन रिद्धियों से भी अधिक ज्योतिर्वंत सर्वनिधीश्वर अरहन, सब निधियों के स्वामी अरहंत परमात्मा होते, तीर्थंकर भगवान होते हैं। यानी ये गौतम गणधर का जो वर्णन था उसमें अपन ने धवला में देखा कि उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो जाती है और उनकी सब रिद्धियों को मिलाकर के जो उनका तेज है उससे भी बढ़कर तेजस्वी अरहंत जिनेन्द्र भगवान है। परम तेजो मयम वपु, उनका शरीर परम तेजस्वी होता है। और जायते क्षीण दोषस्य, घाती कर्म रूपी दोषों का क्षय करने वाले तीर्थंकर या जिनेन्द्र भगवान के शरीर की स्थिति कैसी हो जाती है, तो बोलते हैं वपु सप्त धातु विवर्जितम, उनका वपु अर्थात शरीर सप्त धातुओं से रहित हो जाता है। रस रुधिर आदि सप्त धातुओं से उनका शरीर रहित हो जाता है। यद्यपि संघनन नाम कर्म का उदय रहता है उनमें, वज्र वृषभ नाराज संघनन नाम कर्म उनके उदय में रहता है, लेकिन अपने को विवक्षा ऐसी घटित करनी होगी कि जो पूर्व अवस्था थी इन सप्त धातुओं की वो सब समाप्त हो गई। तो इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि सप्त धातुओं से रहित। तो ऐसे जिनेन्द्र देव होते हैं, उनके जन्म संबंधी 10 अतिशय तीर्थंकरों में होते हैं, सब में नहीं होते। केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय सभी केवलियों में होते हैं और देवकृत 14 अतिशय भी तीर्थंकरों में होते हैं। कुछ अतिशय अन्य में हो सकते हैं लेकिन सब नहीं हो सकते। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान को अपन नमो अरहंताणम कहकर नमस्कार कर रहे थे, और अरहंत भगवान की संपूर्ण विशेषताओं का विस्तार से जो वर्णन है, जैसे 1008 अपन आज वर्तमान में भगवान के लिए क्या लिखते हैं, 1008, तो 1008 भगवान के शरीर पर चिन्ह बने होते हैं। कौन से भगवान के? तीर्थंकर भगवान के। और उन चिन्हों में 108 तो लक्षण होते हैं। लक्षण का अर्थ ऐसा है कि जैसे शांतिनाथ भगवान की नाभि का वर्णन करते हुए गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि भगवान की नाभि गहरी थी, स्पष्ट थी और दक्षिणावर्त थी। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है कि उसके अंदर का जो मूल भाग है वो दक्षिण दिशा में दाहिनी ओर था। कितना बारीक वर्णन है ये, लक्षण हो गया। इसी तरह उनके केश जो थे, उन केशों का आवर्त भी दक्षिणावर्त था। क्या है कि बाल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी घूमे हुए होते हैं और क्लॉकवाइज भी घूमे होते हैं। वो जहां से उगते हैं वहां से देखना पड़ता है, नहीं तो आप ऐसे बाल को घुमा करके देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और ऐसे घुमा करके देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। वैसा नहीं है, घड़ी के कांटे के आकार का सहज उसकी जो रचना होती है वैसी होती है। और इसके अतिरिक्त नासिका, होठ, कर्ण जितने बड़े होते हैं वो इस बात के सूचक होते हैं कि जातक के पास जीवन के अनेक अनुभवों का संग्रह है। अनुभवी और विवेकी और नाना प्रकार की जानकारियों से जो संपन्न होते हैं उनके कर्ण बड़े होते हैं, तीर्थंकर के कान सबसे बड़े होते हैं। पर बड़े होते हुए भी उनका जो अनुपात है, ध्यान से सुनना, वो अनुपात इतना सुव्यवस्थित होता है कि उनके मुखड़े को देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप सबसे पहले कान को ही देखने लग जाओ, इतने बड़े कान हो, ऐसा नहीं है। वो प्रपोर्शनेट होते हैं, अंग्रेजी में ये कहेंगे कि इतने संतुलन में होते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित होता है। उनकी भ्रुकुटियां पूरी, ये जो आंख के ऊपर की जो ये अस्थि होती है अपने स्कल में, ये फ्रंटल बोन कहलाता है, तो ये पूरी एक रिज होती है आंख के ऊपर, ये पूरी उनकी केशों से कवर्ड होती है। बहुत ही सुंदर लगती है उनकी भ्रुकुटियां। फिर उनकी आंखें भी, वो कमल की ऐसे बंद कर लें आंखें तो आप ऊपर के पलक को देख करके यही कहोगे कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कमल की पंखड़ी जैसे है। और इस प्रकार अपन बारीकी से भगवान का पूरा वर्णन करेंगे। 108 तो उनके शरीर में लक्षण होते हैं। उनके हाथ में चक्र, ध्वजा, सूर्य, चंद्रमा, सरोवर, समुद्र, मत्स्य आदि अनेक प्रकार के चिन्ह होते हैं। उनके चरणों के तलवे में भी कमल का चिन्ह होता है। कमल का चिन्ह कुछ साधुओं में आपको मिल सकता है, बहुत दुर्लभ चिन्ह होता है वो। कमल का चिन्ह, कमंडलू का चिन्ह, पिच्छिका का चिन्ह, नाना प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं। तो तीर्थंकर के विशिष्ट 108 चिन्ह होते हैं। उनका भी संग्रह शास्त्रों में टीकाकारों ने किया है कि कौन से वो चिन्ह होते हैं। यदि आपकी रुचि हो तो फिर कभी हम आपको वो पढ़ के सुना देंगे वो प्रकरण, अगर आप चाहें तो। और फिर 900 व्यंजन होते हैं तीर्थंकर भगवान के। तो 108 लक्षण और 900 व्यंजन मिलाकर उनके शरीर पर 1008 चिन्ह होते हैं। हो सकता है लोग उनको 1008 इसीलिए कहते हो। शास्त्रों में तो इसका वर्णन ऐसे नहीं मिलता कि आप भगवान के सामने 1008 लिखो, ऐसा कहीं निर्देश नहीं मिलता, लेकिन वर्तमान में ऐसा चलता है। अब ये व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन की 4-5 भेद हैं अपने शरीर में। ये व्यंजन जैसे हम आपको बता रहे, ये यहां पर आपको दिख रहा है कुछ काले रंग का निशान हमारे इस दक्षिण स्कंद पर, दाहिने कंधे पर, यहां पर ललाट पर भी है ऊपर की ओर थोड़ा सा। अलग अलग राशि वाले जातकों के अलग अलग स्थानों पर ये तिल पाए जाते हैं। तो व्यंजनों में एक तो है तिल, दूसरा है मस्सा। मस्सा जो होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, जन्मता होता है। कभी कभी कालांतर में भी नवीन मस्सों के का निर्माण होता है, और कुछ फैट के कारण जो बनते हैं वो एक अलग श्रेणी के होते हैं। लेकिन ये व्यंजनों के अंतर्गत तिल होते हैं, मस्सा होते हैं, फिर चिट्टे भी होते हैं। चिट्टे का अर्थ होता है आप ऐसे पेन कहीं पर किसी कागज पर रख दो और नीचे से कोई टेबल थोड़ा सा हिला दे, आगे पीछे कर दे, तो एक ऐसा निशान बनेगा। वो रेखा थोड़ी आगे पीछे होकर के न तो गोल निशान बनेगा न लंबा निशान बनेगा, लेकिन एक ही स्थान पर एक थोड़ा सा निशान बन जाएगा, चिट्टा कहलाता वो। और चौथा जो है वो लहसुन होता है। लहसुन नहीं, लहसुन। ये लहसुन जो होता है वो कई लोगों के शरीर में पाया जाता है। कभी ये हृदय वक्षस्थल पर एक कमल जैसा आकार बना हो, वो कमल ऐसे सामने की ओर भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ऊपर की ओर, अथवा अपनी भुजाओं में या कहीं और स्थान पर। कई शरीर के अनेक स्थानों पर लहसुन पाए जाते हैं, कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं। हमें जो अपने शरीर के याद हैं वो हम देख रहे थे। और तिल जो होते हैं वो लाल वर्ण के भी होते हैं, भूरे वर्ण के भी होते हैं, काले वर्ण के भी होते हैं, और श्वेत वर्ण के भी तिल होते हैं। वो ल्यूकोडर्मा से अलग होते हैं, थोड़ी अलग प्रकार की उनकी पहचान होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के चिन्ह तीर्थंकर के शरीर पर 900 होते हैं, 900। अब लोग अपने चेहरे पर अगर मस्सा होता है ना तो उसको हटाने के लिए जमाने के उपक्रम करते हैं कि भी एकदम साफ लगे चेहरा, जबकि कई बार यदि समुचित स्थान पर तिल होता है तो वह तिल सौंदर्य में वृद्धि करता है, सुंदरता को दूषित नहीं करता। तीर्थंकर के सारे व्यंजन उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। इतना अद्भुत पुण्य उनका संचित हुआ है, उन्होंने किया नहीं है। वो तो 16 कारण भावनाओं में मग्न थे और पुण्य का इतना भारी संचय अपने आप हो गया। वो तो अपनी विशुद्धि में थे। विशो ही मूलाणि पुण्याणि, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है कि पुण्य जो होते हैं विशुद्धि मूलक होते हैं। अर्थात अगर आपके अंदर विशुद्धि है तो विशुद्धि रूपी मूल से वो पुण्य का वृक्ष विकसित होगा, अंकुरित होगा। विशुद्धि का अर्थ क्या होता है? अपने ऐसे भाव जो पाप का आश्रव न कराते हो, प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का, साता वेदनीय आदि कर्म का आश्रव कराने वाले भाव को विशुद्धि कहते हैं। तो तीर्थंकर की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं। 108 चिन्ह संभवतः आप शायद कुछ लोग आप में से जानना चाहेंगे तो हम कभी आपको पढ़ के सुना देंगे। अपन नमो अरहंताणम जब समझ रहे हैं तो फिर क्यों ना अच्छी तरह समझ लें, कुछ कमी क्यों छोड़े। यद्यपि कमी तो रहेगी, काल का ऐसा प्रभाव है कि अपने को उस काल में जितनी जानकारियां थी उतनी जानकारियां आज उपलब्ध नहीं है। आज जितनी जानकारियां हैं उसमें से अपन जितना बनेगा उतना अपन जान सकते हैं। अरिहंताणम शब्द का भी अर्थ अपन ने समझा और अरुहंताणम शब्द का भी अर्थ समझा। इन सभी की छाया भी अपन ने देखी। नमो अरहंताणम की दो प्रकार से छाया बन रही थी क्योंकि दो धातुओं से एक ही रूप बनता है प्राकृत में। संस्कृत में तो दो रूप बन जाते हैं लेकिन प्राकृत में एक ही रूप बनता है। नमः अरहद्भ्यः को भी प्राकृत में नमो अरहंताणम कहेंगे और नमः अरहंतृभ्यः को भी प्राकृत में नमो अरहंताणम कहते हैं। तो प्राकृत में एक ही रूप रहता है लेकिन संस्कृत में दो रूप बन जाते हैं। अब नमो अरिहंताणम जो शब्द है उसकी छाया संस्कृत भाषा में नमो नमः अरिहंतृभ्यः ऐसी छाया बनती है। अरिहंतृभ्यः वो भी हन धातु से ही बना हुआ शब्द और अंतिम जो है नमो अरुहंताणम नमो अरुहंताणम इसकी छाया बनती है नमः अरोहद्भ्यः। रोपण शब्द जिस धातु से बनती है वृक्षारोपण आदि उसी धातु से ये अरोहद्भ्यः शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है उगना। अरोहद्भ्यः न उगने वाले। न उगने वाले का अर्थ क्या लेंगे अपन? अभिप्राय लेना, शब्द में नहीं लेना। अभिप्राय ये लेंगे कि जो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे उनको अरुहंत कहते हैं, अरोहद्भ्यः। तो वहां पर हन धातु नहीं है। इस तरह तीन अर्थ अपन ने देखे और फिर आराधना में भी अपन जो जाप्य मालिका के द्वारा अपन आराधना करते हैं तो अपन सातों अरिहंतों के लिए एक एक माला कर सकते हैं और तीन जो पाठ भेद हैं तो सात माला पाठ भेद के साथ तीन बार कर सकते हैं तो 21 माला हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सात प्रकार के केवली होते हैं। उन सात केवलियों में से 6 केवलियों का वर्णन अपन ने यहां पर स्वाध्याय में संपन्न किया था। उनमें प्रथम तीर्थंकर केवली थे, द्वितीय सामान्य केवली थे, तृतीय मूक केवली थे, चतुर्थ उपसर्ग केवली थे, पंचम अंतकृत केवली। कई बार क्या होता है कि जब शिक्षक कुछ बोलते हैं तो फिर विद्यार्थियों को कुछ याद रहता है, कुछ भूल भी जाते हैं तो वो साथ साथ में अपना मुंह हिलाते हैं तो शिक्षक को लगता है कि बहुत अच्छे पठनशील विद्यार्थी हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो मुंह इसलिए हिला रहे हैं कि शिक्षक ऐसा समझे कि पठनशील है। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से स्मरण में रखते हुए आप रोज माला करेंगे ना तो सात केवली तो आपको अनायास कंठस्थ हो जाएंगे। आपको आज की तारीख में कम से कम 70 लोगों के नाम तो याद होंगे ही ना, नहीं होंगे क्या? अपने जीवन में आपसे मिलने वाले 70 लोगों के नाम याद नहीं होंगे क्या आपको? तो फिर सात केवलियों के नाम याद रखने में क्या हानि है? अवश्य कर सकते हैं याद। तो पंचम कौन सा है? अंतकृत केवली, ठीक है। और फिर षष्ठ कौन से हैं? छठे। छठवे नहीं बोलना कभी, छठवां शब्द अशुद्ध भाषा है, छठा शब्द बनता है, तो छठे कौन से हैं अपन पढ़ चुके हैं, स्मरण कीजिए। हम उदाहरण देते हैं आपको, कपड़ा निचोड़ा, फटकारा और फिर फैलाकर आपने सुखाया ना, कौन से केवली हो? समुद्घात केवली। स म में छोटी उ की मात्रा, फिर द हलंत वाला व्यंजन द, फिर घात समुद्घात। फैला लेते हैं अपने आत्म प्रदेशों को और फिर सिकुड़ जाते हैं। कई बार जब जब समुद्घात होता है, देखो एक बात ध्यान में रखना कि समुद्घात अधिकांश केवली करते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं केवली कि जिनकी आयु जितनी बची है उतनी ही स्थिति बाकी आघाती कर्मों की रह गई हो, बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा। आयु बची है अंतर मुहूर्त की, वेदनी और नाम और गोत्र कर्म की स्थितियां भी उतनी ही शेष रह गई हो, अति दुर्लभ है, बाकी सब समुद्घात करते हैं। अंतकृत केवली भी समुद्घात करते हैं, अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कर्मों की स्थितियां विषम है तो उन विषम स्थितियों वाले कर्मों को सम बनाने के लिए समुद्घात अनिवार्य प्रक्रिया है। फैलाना ही पड़ेगा, कपड़े को सुखाने के लिए फैलाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा उस समय बुद्धिपूर्वक तो होता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं होती उस समय, तो केवल ज्ञान है उनका। तो तेसिम क्रिया पुणो ही ओदैया, प्रवचन सार की 45वीं गाथा में लिखा है, पुण्य फलारहंता तेसिम क्रिया पुणो ही ओदैया, मोहा दी ही विरहिया, तम्मा सा खाए गति मदा। पुण्य के फल स्वरूप तीर्थंकर का वैभव प्रकट होता है, उनकी नौ क्षायिक लब्धियां तो उनके पुरुषार्थ से होती, पुण्य से नहीं होती है। क्षायिक लब्धियां तो कर्मों के क्षय से होती है ना, और पुण्य तो ऐसी वस्तु है जो उदय में आएगा तब फल देगा, तो उदय में आकर फल देने वाली चीज नहीं है केवल ज्ञान आदि। केवल ज्ञान आदि जो लब्धियां हैं वो औदयिक नहीं है, इसलिए उनको पुण्य का फल नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो अपार वैभव है, जिस वैभव को देखकर इंद्र के वैभव को देखने वाले देव भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो वैभव है तीर्थंकर का। चक्रवर्ती भी अचंभित हो जाता है, जबकि उसके पास स्वयं 9 निधि 14 रत्न है, लेकिन तीर्थंकर के वैभव के सामने सब अचंभित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, वो वैभव है, वो पुण्य का फल है। तेसिम क्रिया पुणो ही उदैया, उनकी जो प्रवृत्तियां हो रही है वो औदयिक है। मोह आदि ही विरहिया, लेकिन मोह आदि घातिक कर्मों से विरहित है, और उनकी प्रवृत्तियों से अंततः उनको मोक्ष ही प्राप्त होने वाला है, और उनकी दिव्य ध्वनि रूप जो परिणति है उससे दूसरों को मोक्ष मिलने वाला है। तम्मासा खाई गत्ति मदा, इसलिए ऐसे मानी जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रवृत्तियां क्षायिक है, क्योंकि उनके भी कर्मों का क्षय होने वाला है, और उनकी मानने वाले, उनको मानने वालों का नहीं, उनकी मानने वालों के कर्मों का भी क्षय होने वाला है। भिलाई मेन हॉस्पिटल में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक वाक्य है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, ऐसा कोई वाक्य इस अभिप्राय का। तो को और की का फर्क है, सम्यक दृष्टि जीव को और की दोनों को मानते हैं, भगवान को माने भगवान की न माने, सम्यक दृष्टि के साथ ये बात घटित नहीं हो सकती। तो अब समुद्घात केवली के उपरांत अंतिम जो केवली है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा है, और कुछ लोगों ने खोज करके कहीं शास्त्रों से निकाला भी हो, कहीं कोश वगैरह में देखा भी हो, कोई बात नहीं, वो केवली है अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध का अर्थ क्या होता है? एक संख्या हम आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, जो उपदेश करने वाले, चलने फिरने वाले जो केवली भगवान है, अथवा तीसरे शुक्ल ध्यान तक के जो केवली भगवान है, उन सब केवलियों की एक निश्चित संख्या होती है। वो संख्या सर्वकाल होती है, अनादि काल से अनंत काल तक कभी भी वो संख्या न घटती है न बढ़ती है। कौन से केवलियों की? तीसरे शुक्ल ध्यान तक जो स्थित हुए हैं उनकी, चौथे शुक्ल ध्यान में जो चले गए हैं उनकी बात नहीं यहां पर। तो जिन केवलियों ने चौथा शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं किया है, वे समस्त केवली सर्वकाल एक निश्चित संख्या में विराजमान रहते हैं इस धरती पर, संपूर्ण मनुष्य लोक में। वो केवली हमेशा उस संख्या में ही पाए जाते हैं। वो संख्या बड़ी सुंदर संख्या है। सुंदर इसलिए क्योंकि अपने आराध्य बहुत सुंदर हैं, अपने उनके प्रति बहुत अधिक प्रीति है, बहुत अधिक भक्ति है, अत्यंत गुणानुराग से अपन भरे हुए हैं। और जब भी अपन नमस्कार करते हैं तो जब उनको स्मरण करते हैं तो भाव विभोर होकर नमस्कार करते हैं। नमो अरहंताणम बोलते समय हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम। कभी कभी तो आंखें भर आती हैं नमो अरहंताणम बोलते समय। वो संख्या है 898502। कितनी हुई संख्या? ये तो अब इसको अपन ऐसे बोलें, आठ लाख 98,502। ये संख्या याद रख सकते हैं ना? केवल 6 अंक है, 6 अंक प्रमाण संख्या है। आप लोग 10-10 अंक प्रमाण संख्या तो याद रखते हो, नहीं रखते? कितने मोबाइल नंबर्स आपको याद है? ये केवली भगवान का नंबर है। सातों प्रकार के जो अरिहंत हैं, जिन्होंने चौथे शुक्ल ध्यान को प्रारंभ नहीं किया है, वो वाले, इनको सिद्धांत की भाषा में संयोग केवली कहते हैं। ये भी आप चाहें तो लिख लीजिए, बड़ी सुंदर बात है, संयोग केवली। गुणस्थान का नाम है संयोग केवली। योग का अर्थ मन वचन काय की प्रवृत्ति, तो ये प्रवृत्ति इनमें होती है। और वो जो चौथे शुक्ल ध्यान वाले हैं वो अयोग केवली हैं, उनमें मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होती है, सब समाप्त हो जाता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो संयोग केवली जिनों की संख्या 898,502 होती है। और स्मरण रह सकता है, 2-8 के बीच 1-9 है, और 5 और 2 के बीच 1-0 है। अब कोई कहेगा कि भाई ये तो और जटिल हो गया, इसको भी याद रखना। नहीं, जटिल नहीं हुआ। देखो 6 अंक प्रमाण संख्या है, तो 6 अंक प्रमाण संख्या में आपको पहले 3 अंकों को याद रखने के लिए क्या करना है? 2-8 के बीच 1-9 को याद कर लेना, हो गया। अब बाकी 3 अंकों को याद करने के लिए क्या करना है? 5 और 2 के बीच में 1-0 को याद कर लेना। तो क्या हुआ? 898502 हमेशा रहते हैं। अब इसमें, इस संख्या में एक और नियम है। क्या नियम है? कि इसमें कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 20, कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। तो इस तरह नमो अरहंताणम कहते समय अपन ये सारी बातों का स्मरण करके अगर नमस्कार करें कौन जानता है किसके हृदय में सम्यक है, किसके में नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव अगर उस भावना के साथ, उस श्रद्धा के साथ नमस्कार करता है तो सातिशय पुण्य के साथ संवर और निर्जरा की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि जय धवला में लिखा है कि जब साधु नमो अरहंताणम बोलते हैं तो उनकी निर्जरा असंख्यात गुण श्रेणी होती है। और सिद्धांत में अपन देखें तो दीक्षा से लेकर संलेखना तक जो मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज जिनको कहा गया है, गुणस्थान की दृष्टि से भावलिंग और द्रव्यलिंग के भेद होते हैं, जो पांचवें गुणस्थान से ऊपर वाले मुनि हैं वो भावलिंगी कहलाते हैं। तो भावलिंगी मुनिराज की जो कर्म निर्जरा है वो दीक्षा के तत्काल बाद, जैसे उनको वो गुणस्थान प्राप्त हो गया, वो अंत तक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती ही रहती है मुनियों को। 10 जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताए हैं उसमें विरत नाम का एक स्थान है। विरत का अर्थ यहां पर पंचम गुण स्थान से ऊपर का स्थान है। मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज है उनको विरत कहा वहां पर। अब अलग से कह रहे हैं कि नमो अरहंताणम बोलने वाले मुनि को असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, अलग से ध्यान रखना इस बात पर, ध्यान देना कि एक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा लाइफ टाइम के लिए चालू है उनकी, उससे हट करके ये असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नमोकार अरहंत नमोकार से हो रही है, ये उससे भिन्न है। और इस कारण आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अरहंत नमस्कार निर्जरा का कारण है, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। और एक बड़ा सुंदर श्लोक हम आपको सुना रहे हैं कि अगर कोई मुनिराज नमोकार मंत्र की एक माला कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है। भले ही हम पहले बतला चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें दो बार सुनना अच्छी लगती, कई गाने ऐसे होते हैं ना जो बार बार सुनो तो अच्छे लगते हैं, तो वैसे ये कुछ जिन वचन ऐसे हैं आगम के वचन जिनको बार बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, शतमष्टोत्तरञ्चास्य त्रिशुद्ध्या चिन्तयन् मुनिः भुञ्जानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्। 108 बार मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमोकार का चिंतन करने वाले मुनि आहार लेते हुए भी उपवास के पूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। एक उपवास के चतुर्थस्य, और वो भी एक उपवास ऐसा है कि चतुर्थस्य माने चौथी बेला में आहार ले रहे हैं। चौथी बेला में आहार लेने का मतलब साधु तो प्रतिदिन एक ही बार आहार लेते हैं तो एक बेला तो उस दिन की छूटी जाती है। फिर दूसरी, कल आहार लेंगे तो दूसरी बेला में आहार लेना कहलाएगा। इस बेला में तो आहार ले चुके हैं जो दोपहर में आहार हुआ उनका, उसके बाद सायंकालीन बेला छूट गई। फिर आगामी दिवस जब वो प्रथम बेला में आहार लेंगे तो वो तीसरी बेला का आहार कहलाएगा। तो ये तो जीवन भर का चल रहा है उनका, तीसरी बेला का नहीं दूसरी बेला का आहार कहलाएगा, क्योंकि शाम की एक बेला छोड़ी है और दूसरे दिन की प्रथम बेला में आहार कर रहे हैं, तो फिर वो यहां से गिनोगे तो दूसरी बेला कहलाएगी। जिस बेला में आहार लिया है उसको गिनना नहीं है, क्योंकि उसमें तो आहार हो चुका है। फिर प्रत्याख्यान कर लेते हैं आहार का, तो दूसरी बेला का आहार तो प्रतिदिन होता है एकाशन करने वालों के जीवन में। मुनिराज का एक भुक्ति मूल गुण है। लेकिन यहां पर यह लिखा है चतुर्थस्य, जो साधु चतुर्थ बेला में आहार करते हैं, कैसे होगी चतुर्थ बेला में आहार, कैसे होगा? दूसरी बेला में आहार तब होगा जब दूसरे दिन आहार करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरी बेला, तीसरी बेला शाम की। अगर दूसरे दिन की बेला को छोड़ दिया जाए, दूसरी बेला को, तीसरी बेला को भी छोड़ दिया जाए, और फिर उसके बाद वाले दिन की जो प्रथम बेला है वो चतुर्थ बेला होगी, उस बेला में अगर आहार किया जाए तो जो फल प्राप्त होता है, सीधा सीधा सरल भाषा में यह है कि एक उपवास का जो फल होता है वो फल पूर्ण रूप से तीन शुद्धि पूर्वक नमोकार का 108 बार चिंतन करने वाले मुनिराज को, तो यानी नमोकार का अगर ध्यान करें, और इसकी प्रक्रिया भी बताई है, षट कमल जप विधि है वो। तो षट कमल जप विधि में ऐसा होता है, पदस्थ ध्यान होता है, अपने नाभि स्थान पर एक कमल होता है, हृदय स्थान पर एक कमल होता है, कंठ पे एक कमल होता है, मुख में एक कमल बनाते हैं, ललाट में, भाल में, ललाट को भाल भी कहते हैं संस्कृत भाषा में, ललाट में एक कमल बनाते हैं और शीर्ष में एक कमल बनाते हैं, सिर के ऊपर वाले भाग में 6 कमल बन जाते हैं, और सारे कमल 8 पंखड़ियों के होते हैं, और पंखड़ियां दिशाओं में और विदिशाओं में होती है, बीच में कर्णिका होती है, वो पीला वाला जो हिस्सा होता है सभी कमलों के अंदर होता है, एक बीच में हिस्सा रहता है वो, तो वहां बीच से प्रारंभ करते हैं। एक नमोकार मंत्र यहां बीच में कर्णिका में पड़ा, फिर एक पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठे हैं जब जप करने के लिए, पदस्थ ध्यान करने के लिए, तो पूर्व दिशा की पंखड़ी में, फिर दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर दिशा में बैठे तो उत्तर दिशा की पंखड़ी में, पूर्व दिशा की पंखड़ी में, दक्षिण दिशा की पंखड़ी में, और पश्चिम दिशा की पंखड़ी, फिर विदिशाओं में चले गए। तो विदिशाओं में जो होता है, एक नियम है कि अंतिम विदिशा जो है वो ईशान है, इसलिए ईशान दिशा में अपने को पहले जप नहीं करना, अंत में करना है, ये स्मरण में रखने की बात है, तथ्य है। महापुराण में आचार्य भगवत जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि ईशान कोण अंतिम होता है, इसलिए उसमें अंत में ही जप करना है वहां पर। तो यहां आग्नेय कोण में चले जाइए, नैऋत्य कोण में चले जाइए, वायव्य कोण वाले जो पंखुड़ी है कमल की उसमें जाप कर लीजिए, और अंत में ईशान में कर लीजिए। 9 हो गई, कर्णिका को मिला करके, पहले कर्णिका में, फिर दिशा और चार विदिशा, चार दिशा और चार विदिशा, 9 हो गई। फिर इसके बाद ये ललाट के अंदर जो कमल बना हुआ है उसमें इसी विधि से जाप करना है, फिर मुख में जो कमल है उसमें इसी विधि से जाप करना है, कंठ कमल में भी इसी विधि से करना है, हृदय कमल में भी और नाभि कमल में भी। और ये अवरोहण क्रम था, इसका एक आरोहण क्रम भी होगा। अब अवरोहण क्रम पूर्ण हो गया, आरोहण क्रम प्रारंभ करेंगे। अवरोहण का अर्थ होता है नीचे की ओर आना, पर्वतारोहण और पर्वतावरोहण। आप गोमटेश्वर भगवान की वंदना के लिए पर्वतारोहण करके जाते हैं, और फिर नीचे जब भोजन करने के लिए आते हैं तो फिर पर्वतावरोहण करके आते हैं। तो ये है, यहां से आप फिर से 9-9 जप करते हुए आइए ऊपर, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, भाल कमल और शीर्ष कमल। 108 बार नमोकार की जाप हो जाती है, क्योंकि 9 को 6 से गुणा करोगे तो 54 होगा, 9 6 आर 54, 54 की गिनती आएगी, और फिर ऊपर जाते समय 9 को फिर से 6 से गुणित करेंगे तो पुनः 54 की गिनती आएगी। 54 प्लस 54 54 प्लस 54 108, 108 की गणना हो जाएगी। इसके लिए मन को स्थिर रखना होता है। आप मन को स्थिर किए बिना तो कमल जाप हो ही नहीं सकती। बड़ा आनंद आता है इस जाप को अगर श्वासोच्छ्वास के साथ किया जाए तो। कभी एक मुहूर्त भी लग जाता है और कभी दो मुहूर्त भी लग सकते हैं। बड़े आनंद के साथ बिल्कुल निर्विकल्प होकर, सब दुनियादारी से निवृत्त होकर, पांच पापों को छोड़कर, पूरी लगन के साथ, पूरे आनंद के साथ। अपन देखो एक नमो अरहंताणम का अर्थ समझ करके कितने गदगद हो जाते हैं, कितना आनंद आता है। तो यहां तो पूरे पांचों पदों की बात कर रहे हैं। तो मुनिराज जब ऐसा करते हैं तो उनको एक उपवास का अखंड फल प्राप्त होता है। तो अंतिम जो केवली है अनुबद्ध केवली है। अनुबद्ध का अर्थ समझ लेना। अनुबद्ध का अर्थ होता है संपर्क। अनुबंध का अर्थ संपर्क होता है और अनुबद्ध का अर्थ संपर्क को प्राप्त। निश्चित रूप से आप अर्थ के लिए उत्कंठित होंगे कि इसका क्या अर्थ हुआ। तो अनुबद्ध का अर्थ होता है कि जैसे ये जो केवलियों की संख्या थी उसमें संयोग केवलियों की संख्या निश्चित हो गई। अब वो अयोग केवली जो हैं उनके विषय में सिद्धांत की भाषा में कहा जाता है कि वो सांतर मार्गणा के गुणस्थानों में आता है उनका स्थान। सांतर का अर्थ होता है कि जैसे संयोग केवली हमेशा पाए जाते हैं, अयोग केवली हमेशा नहीं होते। अंतराल पड़ सकता है उनमें। अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। आपको अगर रुचि हो तो इसका भी आप, इसको भी आप याद रख सकते हैं स्मरण में, इसको भी स्थापित कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चौथे शुक्ल ध्यान में स्थित केवली भगवान अपने को 6 महीने तक ना मिलेंगे। उसके बाद कोई ना कोई वहां चले जाएंगे चौथे शुक्ल ध्यान में। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अनादि से ये क्रम चला आ रहा है। और एक साथ एक समय में, है ना, एक समय में 14वें गुणस्थान का काल जो है वो एक समय नहीं है, अंतर्मुहूर्त काल है। अ ई उ री ली, इन 5 अक्षरों का उच्चारण करने में जितना काल लगता है, 5 मात्रा का काल होता है। तो 5 मात्रा का काल संयोग के अयोग केवली गुणस्थान का है। एक समय में एक साथ उस 14वें गुणस्थान में 108 अरहंत भगवान हो सकते हैं। 108 एक समय में। समय काल का सबसे सूक्ष्म खंड है। तो अपन अनुबद्ध का अर्थ समझने जा रहे थे वो ये था कि 14वें गुणस्थान का काल पूर्ण हो गया, 5 मात्राएं पूरी हो गई, चौथा शुक्ल ध्यान समाप्त हुआ। चौथे शुक्ल ध्यान के अंत के 2 समय जब रह जाते हैं तब उसके पहले समय में 72 कर्मों का नाश हो जाता है और दूसरे समय में 13 कर्मों का नाश हो जाता है। 63 का पहले ही नाश हो चुका है जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब 63 प्रकृतियों का नाश हो चुका था। अपन पूजा में क्या पढ़ते हैं, एक पंक्ति आती है ना, चहु कर्म की 63 प्रकृति नाश, ऐसी एक पंक्ति आती है। तो वो 4 कौन से कर्म है, ये चार कर्म जो है ना, घाती अघाती वाले चार कर्म नहीं लेना वहां पर, उसकी चर्चा अपन फिर करेंगे। आप याद दिलाना हमें, तो उन कर्मों का हम वर्णन फिर करेंगे। आज अपन ये समझ लेते हैं अनुबद्ध का अर्थ क्या है। अनुबंध का अर्थ संपर्क होता है, और अनुबद्ध का अर्थ होता है संपर्क को प्राप्त। ऐसे केवली जो संपर्क को प्राप्त हो गए, इसको समझने के लिए यह है कि जैसे महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने मोक्ष जाने से 2 दिन पहले समवसरण को छोड़ दिया था। समय समवसरण विघटित हो गया था, विकीर्ण हो गया था, और पावापुरी में आकर के वो विराजमान हो गए थे, और उन्होंने खड़े होकर मोक्ष प्राप्त किया था। 24 तीर्थंकरों में तीन तीर्थंकरों ने बैठकर और शेष ने खड़े होकर, 21 तीर्थंकरों ने खड़े होकर मोक्ष प्राप्त किया था। तो महावीर स्वामी ने खड़े होकर मोक्ष प्राप्त किया था। अनुबद्ध का अर्थ है कि यहां से एक अरिहंत निर्वाण को प्राप्त हो गए, और यहां धरती पर एक मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो एक साथ होती है घटना, वो मोक्ष जाते हैं और ये केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। आठ नौ आठ पांच शून्य दो संख्या यथावत रहती है। तो गौतम गणधर अनुबद्ध केवली थे। सामान्य केवली तो थे ही, लेकिन साथ में अनुबद्ध केवली थे, क्योंकि महावीर स्वामी मोक्ष गए और इनको केवल ज्ञान हो गया। फिर गौतम स्वामी मोक्ष गए, सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्म स्वामी मोक्ष गए, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। इस तरह तीन अनुबद्ध केवली हो गए। यानी एक केवली मोक्ष के संपर्क को प्राप्त हो गए, और एक मुनि उसी समय केवल ज्ञान के संपर्क को प्राप्त हो गए। अनुबद्ध। लेकिन जम्बू स्वामी जब मोक्ष गए उत्तर मथुरा से, तब केवल ज्ञान को कोई मुनिराज प्राप्त नहीं हुए। कहीं विदेह आदि क्षेत्रों में कोई हुए हों वो बात अलग है, लेकिन यहां से कोई नहीं हुए। तो फिर अनुबद्ध केवलियों में अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, पंचम काल में यहां की अपेक्षा। जन्म तो चौथे काल में हुआ था, मोक्ष की बात कर रहे हैं। गौतम स्वामी भी केवल ज्ञान से 12 वर्ष के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। सुधर्माचार्य केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। तो ऐसा ये क्रम चला था, ये अनुबद्ध केवली हो गए। तो इस तरह ये सातों प्रकार के केवलियों को अपन नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम तीन पाठ के उच्चारण पूर्वक या स्मरण पूर्वक नमस्कार करते हैं। भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में न हिलने के कुछ कारण होते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। मुख्यतया चार ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण अंत में भगवान का नाम मुख से नहीं निकल पाता। नमो अरहंता। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश
चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कहे धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राज महं यजे जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे जिन गृहे मुनिराज महं यजे ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि औषा देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।